मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, अब आपको मुगल काल के व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एलपी शर्मा के बुक में संकलित है। मुगल काल में भारतीय व्यापार अच्छी स्थिति में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शांति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का अवसर दिया था। मुगल बादशाहों ने सड़कों, सरायों और यातायात की सुरक्षा का प्रबंध किया था, जिससे व्यापार में सुविधा होती थी। उत्तरकालीन दुर्बल मुगल बादशाहों के समय में ही इन परिस्थितियों में अंतर हुआ, अन्यथा राज्य की परिस्थितियां व्यापार के अनुकूल थी। मुगल बादशाह व्यापारी कर भी कम लेते थे। विदेश जाने वाली और विदेशों से आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 3.5% से अधिक व्यापारिक कर नहीं लिया जाता था। व्यापार सड़कों और नदियों दोनों से होता था। विदेशों से व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। स्थल मार्ग उत्तर पश्चिम की ओर था। इसके लिए सड़क लाहौर से काबुल तक और दूसरी सड़क मुल्तान से कंधार तक जाती थी। गुजरात दक्षिण भारत के दोनों तरफ के समुद्र तट और बंगाल में अच्छे बंदरगाह थे, जो समुद्री मार्ग से व्यापार की सुविधा प्रदान करते थे। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों से था। फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अरब, मिस्र, मध्य एशिया, फारस, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह, नेपाल आदि सभी से भारत के व्यापारिक संबंध थे। भारत फ्रांस से ऊनी वस्त्र, इटली और फारस से रेशम, फारस से कालीन, चीन से कच्चा रेशम और मध्य एशिया तथा अरब से घोड़े मंगाता था। सोना और चांदी भी भारत विदेशों से लाता था, क्योंकि यहाँ एक कम मात्रा में उपलब्ध थे। इनके अतिरिक्त अच्छी शराब, कांच के बर्तन, मखमल आदि भी भारत विदेशों से आयात करता था। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती कपड़ा प्रमुख था, जिसकी मांग यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी देशों में बहुत थी। इसके अतिरिक्त काली मिर्च, नील, अफीम, चीनी, सोरा, मसाले, नमक आदि विभिन्न वस्तुओं भारत से विदेशों को भेजी जाती थी। इस प्रकार भारत का विदेशों से विस्तृत व्यापार था। इस व्यापार में लाभ की स्थिति भारत की थी, जो भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने में सहायक थी। मुगल काल में व्यापारी वर्ग मध्यम वर्ग का सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग था। मुगलकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर इस वर्ग का प्रभुत्व था। इनमें छोटे और बड़े, आंतरिक तथा विदेशी, स्थानीय आधार पर ही व्यापार करने वाले सभी व्यापारी सम्मिलित थे। सूरत का एक व्यापारी बिरजी बोहरा अपने समय का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति माना जाता था। इसी प्रकार सूरत के अब्दुल गफूर और अहमद चैलाबी, गोलकुंडा का मीर जुमला और दक्षिण कोरोमंडल के मलय चट्टी, काशी वरिन्ना और सुनकाराम चट्टी अपने समय के बहुत धनवान व्यापारियों में स्थान रखते थे। बर्नियर ने ऐसे कई व्यापारियों का उल्लेख किया है, जिनका अकेले अकेले का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं था। भारतीय व्यापारियों ने विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता भी प्राप्त कर ली थी। थोक व्यापारियों, सर्राफा, साहूकारों, गुमास्तों, दलालों आदि ने अपने अपने क्षेत्र में न केवल दक्षता ही प्राप्त कर ली थी, अपितु पृथक पृथक व्यवसायी समूहों के रूप में भी संगठित हो गए थे। उस काल में व्यापारिक क्षेत्र में बंजारों की भी एक विशेष भूमिका थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाने में दक्ष हो गए थे। वे न केवल वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, अपितु ऐसा करते हुए अपना भी व्यापार कर लेते थे। सर्राफों ने धन के लेन देन की और धन को अमानत के रूप में रखने, धन उधार देने और धन को हुंडी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। हुंडी एक प्रकार का कर्ज लेने या देने अथवा धन देने या पाने का लिखित पत्र था। व्यापारी वर्ग हुंडी के माध्यम से ही लेन देन किया करते थे, जिससे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। 16वीं सदी में यूरोपीय राज्यों में से सर्वप्रथम पुर्तगाल ने भारत से होने वाले व्यापार में साझेदारी आरंभ की। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने के कारण यूरोपीय देशों के पूर्वी देशों से होने वाले व्यापार में बाधा आने लगी। यूरोपीय देश गर्म मसालों, जो उनकी खाद्य सामग्री का एक महत्वपूर्ण भाग था, के लिए पूर्वी देशों के व्यापार पर निर्भर करते थे। इस कारण यूरोपीय देशों में पूर्व के लिए प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग के खोजने के प्रयत्न आरंभ हुए। मुख्यतया भारत के लिए मार्ग खोजने के जो उनके विचार के अनुसार गर्म मसाले प्राप्त करने का मुख्य स्थान था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधि वास्को डी गामा आशा अंतरिप के मार्ग से भारत में कालीकट पहुंचा। संपूर्ण 16वीं सदी में भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में होने वाले व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिपत्य रहा। परंतु 17वीं सदी में पहले डच और बाद में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सत्ता को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी देशों के व्यापारों पर डचों ने और भारत के व्यापार पर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 18वीं सदी के मध्य तक प्रायः यह स्थिति रही। बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत के व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यूरोपीय राज्यों ने अपनी नौसेना की शक्ति की श्रेष्ठता के द्वारा भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के यूरोप से होने वाले व्यापार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। परंतु तब भी उन्होंने भारतीय व्यापार की वृद्धि की, जिससे भारत को लाभ हुआ। उन्होंने गर्म मसालों के व्यापार के साथ साथ भारतीय सूती कपड़े के विदेशी व्यापार में भी वृद्धि की। भारत का सूती कपड़ा, जो भारत का प्रमुख उद्योग था, यूरोप के विभिन्न देशों में विस्तृत बाजार प्राप्त कर सका, जिससे भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। यह स्थिति उस समय तक बनी रही जब तक अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपने आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन नहीं बना लिया। यह प्रक्रिया 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध के पश्चात आरंभ हुई और उस समय से अंग्रेजों का भारत का आर्थिक शोषण आरंभ हुआ। इस प्रकार 16वीं सदी से प्रायः 18वीं सदी के मध्यकाल तक यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आने से भारत और व्यापार और उनकी समृद्धि में वृद्धि हुई। यद्यपि 18वीं शताब्दी के समाप्त होने तक अंग्रेजों द्वारा भारतीय व्यापार को भारत के आर्थिक शोषण करने का माध्यम बना लिया था, वाणिज्य यद्यपि आधुनिक समय की भांति मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, परंतु तब भी कर्ज लेने और देने आधुनिक बैंक ड्राफ्ट या चेक की भांति जमा करने या अपना धन लेने और अपने धन को सुरक्षा से बैंक ड्राफ्ट के समान भेजने की सुविधा मुगल काल में विभिन्न रूपों में उपस्थित थी। लगान अर्थात खराज का मुद्रा के रूप में लिए जाना एक ऐसा ही कारण था, जिसकी वजह से गांव भी मुद्रा व्यवस्था में सम्मिलित हो गए थे। मुद्रा के व्यापक असर और उसके चलन का लगान प्रशासन और व्यापार में प्रयोग किया जाना ही मुगल शासन ने के अंतर्गत विकसित हुई बैंकिंग व्यवस्था का मूल कारण था। गाँव में मुद्रा व्यवस्था के कारण एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसे सर्राफ पुकारते थे। बहुत ही छोटे गांवों को छोड़कर प्रत्येक गांव में सर्राफ होते थे। ये सर्राफ धन के लेन देन और वस्तुओं के क्रय विक्रय में शामिल होते थे। इसके अतिरिक्त सर्राफ का एक मुख्य कार्य मुद्रा को ठीक परख करना होता था। इस समय व्यक्ति धातु देकर सरकारी टकसाल में मुद्रा ढलवाने के लिए स्वतंत्र था। इस स्थिति में मुद्रा की सही परख होना आवश्यक था। सर्राफ इस कार्य को संपन्न करता था। इस कारण गांव में ही नहीं अपितु शहरों में भी बड़ी संख्या सर्राफ हो गए थे। सर्राफ मुद्रा या सिक्कों को ठीक परख करने के बदले में धन लेता था। घटिया सिक्कों को लेकर और ठीक सिक्के देकर लाभ प्राप्त करता था। पुराने सिक्कों को टकसाल में दोबारा ढलवाने के लिए ले लिया जाता था। किसानों को आवश्यकता अनुसार कर्ज देता था तथा शहरों में व्यापारियों या अमीरों को भी ब्याज लेकर कर्ज देता था। मुगल काल की व्यापारिक गतिविधियां में बीमा प्रणाली भी प्रचलित थी। अंग्रेज फैक्ट्रियों के कागजों में तथा सुजान राय द्वारा लिखित खुलासात उस तारीख में इस प्रकार के विवरण दिए गए हैं। यह कार्य भी सर्राफों के द्वारा ही किया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं का बीमा सर्राफ करते थे। उनके दो तरीके थे। एक के द्वारा बीमा करने वाले वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के समय तक उन वस्तुओं का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता था और दूसरे तरीके के द्वारा वह उत्तरदायित्व के अतिरिक्त वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी स्वयं लेता था। निश्चय ही अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग धनराशि बीमा प्राप्त करने को होती थी। सर्राफ अपने पास धन को सुरक्षा के लिए भी रखते थे और उस पर ब्याज भी देते थे, जो कार्य आधुनिक बैंक करते हैं। अंग्रेज फैक्ट्रियों के कागजों से यह पता लगा है कि आरंभ में अंग्रेज अपनी संपूर्ण पूंजी सर्राफों के पास जमा कर दिया करते थे, जो उसको अधिक ब्याज पर अन्य व्यापारियों को दे दिया करते थे। सर्राफों के अतिरिक्त धनवान व्यापारी, महाजन और साहूकार आदि भी यह कार्य को करते थे। सर्राफों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हुंडी जारी करना था, जो उस समय की बैंकिंग व्यवस्था में बहुत उपयोगी कार्य था। अबुल फजल के विवरण से यह स्पष्ट पता लगता है कि जब एक व्यक्ति अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था, तब वह किसी सर्राफ या साहूकार के पास जाता था और वह धन उसे दे देता था। वह साहूकार उसे एक हुंडी दे देता था, जो वस्तुतः एक लिखित पत्र था, जिसके आधार पर वह व्यक्ति उस स्थान पर जाकर जहां उसे धन भेजना होता था, उस साहूकार के एजेंट से अपना धन ले लेता था। इस प्रकार उस व्यक्ति को अपने साथ धन ले जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसमें खतरा था। इस प्रकार साहूकार की हुंडी एक आधुनिक चेक या बैंक ड्राफ्ट के समान थी। हुंडी इतनी अधिक माननीय और सर्वस्वीकृत थी कि उस पर न किसी गवाही की आवश्यकता थी और न किसी मुहर की। सुजान राय खत्री ने खुलासात उस तारीख में हुंडी के प्रचलन का वर्णन किया है। साहूकारों ने इन हुंडियों का लाभ प्रशासकीय अधिकारी और अमीर वर्ग भी प्राप्त करते थे। ऐसे अनेक विवरण प्राप्त हुए हैं जिनमें यह दिया गया है कि सरकारी धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर साहूकारों की हुंडियों के माध्यम से पहुंचाया गया था। हुंडियों के माध्यम से कर्ज लेने और देने का भी कार्य होता था। इसके अतिरिक्त ये हुंडियाँ खरीदी और बेची भी जा सकती थी। इस प्रकार हुंडियों के माध्यम से व्यक्तियों, व्यापारियों आदि को पर्याप्त मात्रा में वे सुविधाएं प्राप्त थी जो आधुनिक समय में बैंक प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जिस प्रकार आधुनिक बैंक ब्याज लेते या देते हैं अथवा पारिश्रमिक मूल्य अपने कार्य के लिए लेते हैं, उसी प्रकार सर्राफों, साहूकारों, सेठों या धन के लेन देन, बीमा करने आदि से संबंधित सभी व्यक्ति मुगल काल में भी इस कार्य के व्यवसाय के रूप में करते थे। और अपने कार्य अथवा उत्तरदायित्व के बदले में पारिश्रमिक मूल्य अथवा ब्याज प्राप्त करते थे। ऐसे भी विवरण प्राप्त हुए हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए पारिश्रमिक मूल्य और ब्याज की दरें प्रायः निश्चित की गई थी, जैसा कि आधुनिक बैंकों के साथ है। अंग्रेज फैक्ट्रियों के विवरण से प्राप्त होता है कि 17वीं सदी में देहली से आगरा के लिए दी गई हुंडी की अदायगी पर 1% और बुरहानपुर से अहमदाबाद के लिए दी गई हुंडी पर अदायगी पर 2.5% शुल्क था। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानों की दूरी और धन की सुरक्षा के अनुपात से हुंडी जारी किए जाने के प्रारंभिक शुल्क में अंतर होता था। उसी प्रकार सर्राफ या साहूकार जो धन का लेन देन करते थे उसके ब्याज में भी अंतर होता था। विभिन्न स्थानों पर लेन देन पर ब्याज की दरें भी भिन्न थीं, उनमें वृद्धि या कमी भी समय समय पर होती रहती थी। इस क्षेत्र में आधुनिक बैंकों की भांति उस काल में समानता नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुगल काल में भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो मुद्रा पर आधारित थी और जिसमें बैंकिंग बीमा आदि की व्यवस्था समुचित रूप में उपस्थित थी। यद्यपि उसकी तुलना आधुनिक बैंक व्यवस्था से किए जाना उचित नहीं है, परंतु तब भी उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी विकसित व्यापार पद्धतियां सम्मिलित थीं। यह माना जा सकता है कि अपने युग की परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक स्थिति मुगल काल में अच्छी रही थी। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में भी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों को भारत से बहुत संपत्ति प्राप्त हुई थी। 18वीं सदी की बढ़ती हुई अराजकता ने निश्चय ही इस आर्थिक संपन्नता को नष्ट कर दिया, यह सत्य है। परंतु यह समय बाद का था जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का वाणिज्य और व्यापार हेडिंग समाप्त होता है।